بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله مولانا العظيم. یہ سورت الگ نشرہ ہے. اس سورت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو بیان فرمایا ہے. شروع زمانے میں جب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آپ کو نبی اور پیغمبر بنایا گیا اللہ تعالی نے آپ کو بغیر کسی استاد کے کسی مدرسے میں پڑھے بغیر ایسا زبردست علم عطا فرمایا کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا علم اگر جمع ہو جائے تو بھی حضور کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا. ایسا سمجھنا چاہیے سمجھنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے جو علم رکھا تھا وہ علم سمندر کے پانی کی طرح ہے. اور تمام انسانوں کا جو علم ہے وہ اتنا کم ہے کہ ایک چھوٹی سی چڑیا اگر سمندر کے کنارے پر بیٹھے اور سمندر میں سے وہ پانی پیے تو چڑیا کی چونچ کے اندر کتنا پانی آئے گا؟ ایک چھوٹا سا خطرہ. تو یوں سمجھ لو کہ تمام انسانوں کے پاس جو علم ہے جو جانکاری ہے جو معلومات ہے وہ چڑیا کی چونچ میں آنے والے پانی کے ایک قطرے کے برابر ہے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ سمندر کے پانی کی طرح ہے. اب اتنا بڑا سمندر جیسا علم کہاں ہے؟ تو کہا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے میں اللہ نے رکھ دیا ہے. دل کتنا چھوٹا ہوتا ہے. حکیم لوگ کہتے ہیں एक इंसान की जितनी मुट्ठी होती है इतना इंसान का दिल हुआ करता है। इतने छोटे से दिल के अंदर समंदरों और दरियाओं जैसा इल्म जो अल्लाह ने रखा, ये अल्लाह ताला ने आपके सीने को ऐसा वसी और कुशादा रख दिया। अल्लाह सुबहानहु व तआला पहली आयत में वही नेमत याद दिलाए कि आप अपने सीने को देखिए कि हमने उसको कैसा खोल दिया, ऐसा खोल दिया आपके दिल मुबारक को कि बड़े बड़े समंदर के अंदर जितना पानी होता है उससे ज्यादा इल्म हमने आपकी इतने छोटे से सीने में रख दिया। और ऐसे आपका सीना मुबारक अल्लाह ताला ने बाकायदा खुलवाया था। हुजूर जब बहुत छोटे से बच्चे थे और दाई हलीमा के यहां दूध पी रहे थे, हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जो मकान था वो मक्का से बहुत दूर था, मक्का से ताइफ जाओ, ताइफ बहुत ऊंचाई के ऊपर है, और मक्का में चाहे कितनी भी गर्मी हो लेकिन ताइफ के अंदर पूरे साल मौसम ठंडा होता है। मक्का में एयर कंडीशन चलते हैं और ताइफ चले जाओ तो वहां कंबल ओढ़नी पड़ती है। चार पांच घंटे का सफर है मक्का से ताइफ का, फिर ताइफ से पहाड़ी इलाके में जाना पड़ता है। आज तक वहां पक्का रास्ता नहीं है, कच्चे रास्ते हैं। तकरीबन 45 या 50 किलोमीटर का फासला हो ताइफ, जहां हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का खानदान रहता है। वो कबीले बनू साद कहलाता है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच के अंदर, और आज भी वो खानदान वो कबीला उसी तरह पहाड़ों के बीच में बिल्कुल जंगली जिंदगी जैसी होती है, इस तरह एंटिक जिंदगी में वो रहता है। हुजूर वहां दूध पीने के लिए भेजे गए, एक दिन दूध छुड़ाने के बाद जैसे बच्चों की उम्र होती है खेलने की बकरियां चराने की, हजरत हलीमा की बकरियां लेके हुजूर चराने के लिए गए हुए थे, साथ में हजरत हलीमा के बच्चे भी थे, दूसरे बच्चे भी उनके पास दूध पी रहे थे, और अजीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन से आदत थी कि आप सिर्फ एक छाती से दूध पीते थे और दूसरी छाती अपने दूसरे भाई के छोड़ देते, जो दूसरा बच्चा था हजरत हलीमा के पास वो हुजूर का सगा भाई नहीं था, लेकिन फिर भी हुजूर को कुदरती अल्लाह की तरफ एक शादी से दूर भी थे, दूसरी शादी से नहीं थे, सारा उनके भाई के बाद। अब बकरियां चरा रहे तो दूसरा भाई दौड़े दौड़े आया हजरत हलीमा के पास और आकर के कहता है, अम्मा अम्मा, वो जो अपना भाई है मोहम्मद, उसको दो आदमी ने आकर के पकड़ लिया है और वहां उस दरख्त के नीचे ले गए और ले जाकर के उनका सीना चीर दिया, उनको जमीन पे सुला दिया और पता नहीं वो मेरे भाई के साथ क्या कर रहे हैं वो दो आदमी। वो बच्चा एकदम घबराया हुआ था, डरा हुआ था और हजरत हलीमा को जबरदस्ती ले जाया गया। हजरत हलीमा भी घबरा गए और भागी भागी रवाना होगी देखने के लिए। तो इतने में तो सब काम हो चुके, हुजूर दरख्त के नीचे खड़े हो गए। हजरत हलीमा ने जाके हुजूर को अपनी गोद में ले लिया। बेटा क्या हुआ? कदू आदमी आए थे, सीना मुबारक चीरा, चीर करके बुजुर्ग बच्चे भी क्या हुआ वो तफसील पता नहीं चल सकते। लेकिन जब ऐसा किस्सा जिंदगी में दूसरी मरतबा हो, तीसरी मरतबा हो, जब आपको मेराज में फरिश्ते ले गए तब पूरी तफसील पता चले कि वो आने वाले दो आदमी कोई और नहीं थे, वो अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्राइल और मीकाईल थे। उन्होंने आकर हुजूर को सुला दिया एक दरख्त के और आपका सीना चीरा, अंदर से दिल मुबारक निकाला और उसको फाड़ करके अंदर से जो खून होता है वो खून बाहर निकाला। आपकी बकरे का दिल की हो तो अंदर से खून निकलेगा जमा हो, मुर्गी का दिल की हो तो उसके अंदर से भी थोड़ा सा खून निकलेगा एक कतरे जैसा। कबूल निकाल लिया और कहते हैं कि वही जो खून होता है दिल के अंदर उसी के ऊपर शैतान असर करता है। तो जब वो खतरा निकाल लिया खून का, तो अब शैतान के असर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और जिब्राइल और मीकाईल अपने साथ जमजम का पानी लाए, उस जमजम के पानी से आपके सीने और दिल मुबारक को धोया और जन्नत से सोने का खुंचा लाए, बस उसमें ईमान और यकीन भरा हुआ वो पूरा हुजूर के दिल मुबारक में रखा, सीने मुबारक में रखा और फिर टांके लगा लिए और दिल जैसा था वैसा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ और परेशानी नहीं हुई। और यहां बहुत करने का मकाम है, जिब्राइल और मीकाईल ने आकर के जो दिल मुबारक को धोया तो जमजम के पानी से धोया, हालांकि वो हौज़े कौसर से भी पानी ला सकते थे, जन्नत में से भी पानी ला सकते थे, लेकिन न जन्नत का पानी लाएंगे न हौज कौसर का पानी लाए, बल्कि मक्का से जमजम का पानी लाके ये मुबारक को धोया। उसी के उलमा ने मसला निकाला है कि उससे ये बात समझ में आई कि जमजम का पानी तमाम पानियों से अफजल है, हौज कौसर के पानी से भी जमजम का पानी अफजल है, जन्नत की नहर के पानी से भी जमजम का पानी अफजल है। इसलिए कि अगर जमजम से ज्यादा अफजल कोई पानी होता तो हुजूर के दिल मुबारक के लिए उसी पानी को लाया जाता। लेकिन हुजूर के दिल मुबारक को जमजम से धोया गया, मालूम हुआ कि सबसे अफजल पानी जमजम का, और एक और पानी उससे भी अफजल था जमजम से भी। तो खुश नसीब लोगों को मिला, बाद में किसी को नहीं मिला, और वो पानी नंबर वन का जमजम से भी अफजल। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से आ रहे हैं और सब सहाबा को सफर में प्यास लगी, जानवर प्यासे हो गए, क्योंकि ऊंट पर घोड़े पर खच्चर पर गधे पर सफर होता था, पानी का कोई कुआं नहीं। हुजूर ने पूछा किसी के पास पानी है, एक छोटे से बर्तन में पानी लाया हुआ, उसके सिवा और कोई पानी नहीं, छोटे से बर्तन वो भी अधूरा, और इतना बड़ा लश्कर जिसमें कई सौ आदमी थे और जानवर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियां उस पानी के बर्तन में रख दी। जैसे हुजूर ने उंगली मुबारक रखी तो अंदर से पानी का फुहारा निकला समझो, और इतना पानी निकला कि जितने सहाबा उस लश्कर में थे, कई सौ सैकड़ों सब सहाबा ने पेट भर करके पानी पिया। जितने जानवर थे सब जानवरों ने पेट भर के पानी पिया, सबके पास जितने बर्तन थे सबने अपने बर्तन पानी से भर लिए, लेकिन फिर भी वो बर्तन के अंदर पानी जितना था इतना ही था, एक कतरा भी कम नहीं हुआ। ये जो निकला वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से निकला। हदीस की किताबों में है कि दुनिया में सबसे अफजल पानी नंबर वन ये पानी है जो हुजूर की मुबारक उंगलियों से निकला और सहाबा और सहाबा के जानवरों को पीना नसीब हो। और दूसरे नंबर का पानी जमजम का पानी, तो हुजूर के सीने मुबारक को जमजम ने धोया था, और इस तरह उसकी तरह इस आयत में इशारा है। आजादा शराबला का सौर, क्या हमने आपके सीने मुबारक को खोल नहीं दिया, खोला खोल के धोया, धो के ईमान करा, जमजम से धोया और फिर उसके टांगे लगा दी, और ऐसी सर्जरी ऐसा ऑपरेशन जिंदगी में दो या तीन मरतबा हुजूर को हुआ। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में है कि मैंने खुद देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां पर कि वो टांगे के निशाना मैंने देखे, लेकिन कोई तकलीफ हुजूर को नहीं हुई, क्योंकि जिब्रील अमीन ये काम कर रहे, और आपको मैं एक अजीब बात सुना के लिए तकरीबन 6 या 7 साल हुए मैं मक्के मुकर्रमा पहुंचा है जिन्हें और वालिबन ईरान का एहराम बांधा हुआ है। शाम को पहुंचा तवाफ पर उमरे से पारी हुआ ईरान के एहराम में खुलना नहीं होता है हरम शरीफ में गया। अब एक जगह फिक्स है जहां अपने सारे बुजुर्गों ने दी वलमाए ईरान में बैठते हैं वहां पहुंचा क्योंकि मुझे मालूम था कि हमारे हजरत मुफ्ती अहमद साहब दामन सरकार को और सारे साथी लोग पहले पहुंच चुके थे मैं आखिर में गया था। तो मैं सोचा ईशा की नमाज में तो मुझे कहा कि वो कल सुबह के अंदर ताई पे गाड़ी जा रही है हजरत तो मुझे फरमा कि मुझे मालूम था कि वो आज आने वाला है तो मैंने तेरी भी उसमें बुकिंग करवा रखी है तुझे जाना है उसमें बहुत अच्छा कहां जाना है क्या है कुछ मालूम नहीं कहा कि फजर की नमाज हरम में पढ़ के इस दरवाजे पे आ जाना हम पहुंच गए। अब वो गाड़ी चली सऊदी अरबिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ हज है वजारतुल हज की वो गाड़ी थी और उसमें सफर हो रहा वरना आमतौर पर हजियों को जाने नहीं देते लेकिन हर मिनिस्ट्री की गाड़ी में सफर हो रहा है। गए गए तकरीबन 150 किलोमीटर का सफर तय हुआ ताई शुरू हुआ तो वहां से भी केबल कार में गए वो जो रस्सी के ऊपर गाड़ी चलती है उसमें बैठे और बैठ करके ऊपर उतरे ताई शहर में और सारा नजारा देखते हुए वो पहाड़ी जिस पहाड़ी के ऊपर आज तक निशाना है कि तकरीबन उसी रास्ते से हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताई तशरीफ ले रहे हैं। ताई से ताई के अंदर जो यादगार थे जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर लगे थे और जब आप जख्मी हो गए तो एक पत्थर पर हुजूर बैठ गए थे और बैठ करके हुजूर ने दुआ मांगी थी वो पत्थर आज तक मौजूद है उसको बड़ी बड़ी जालियों से कोड़ा भी दिया हुआ। हमने साथियों को बात इसी तरह के अंदर कूद के जाना है और जहां हुजूर के खून मुबारक के कतरे गिरे अपने सबका हुजूर वहां जाकर अपने दो रकात नमाज पढ़ेंगे। हिम्मत करके सब नौजवान साथी के घुस गए और जिस पत्थर मुबारक पर बैठकर हुजूर ने दुआ मांगी थी अल्लाह अगर ये ताइफ की नसल ईमान ये ईमान नहीं लाते उनकी नसल जरूर ईमान लाएगी। सब साथियों ने दो दो रकात नमाज पढ़ाई फिर वहां से निकले हुजूर पत्थर खाने के बाद एक खजूर की बाड़ी में तशरीफ ले गए और एक खजूरी के दरख्त से टेक लगा के बैठे थे उसका लंबा पिस्ता है कभी इंशाल्लाह वो सुनाऊंगा। तो जहां हुजूर ने उस खजूरी के दरख्त को टेक लगाया और अद्दास नाम के एक इराकी गुलाम ने आपको अंगूर खिलाए थे वहां एक मस्जिद बनी हुई है उसका नाम है मस्जिद अद्दास वहां पर भी साथियों ने दरकार नमाज अदा की फिर चले। अब ताइफ से बाहर निकल गए सब तक ठंडी लग रही है बिल्कुल पहाड़ी का रास्ता खतरनाक पहाड़ों में कोई रास्ता नहीं कच्चे रास्ते में गाड़ी चल रही है तकरीबन 3.5-4 घंटे गाड़ी चली 50-45 किलोमीटर के सफर में चलते चलते हम लोग पहुंचे तो पता चला कि ये आ गया हजरत हलीमा सादिया का इलाका और यहां हजरत हलीमा सादिया रहती थी चारों तरफ पहाड़ी इलाका और दो छोटे छोटे मकान समझो कि तीन कदर हो गई इतने। बताया उस कबीले के लोगों ने कि यही मकान हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा था। तीन कबर के तकरीबन उस मकान में हम दाखिल हो गए और जाकर के बैठे बैठे दो रकात नमाज पढ़ी, बिल्कुल नीचा खड़े होकर नमाज भी नहीं पढ़ सके, एकदम नीचा बैठ करके दो रकात दाखिल नमाज पढ़े। उसके बाद मैंने साथियों को कहा थोड़ी देर जिक्र करो, अल्लाह अल्लाह कर रहे बैठ कर सबने जिक्र किया। फिर बाहर निकले, निकल करके आए तो बताया कि हजरत हलीमा की बकरियां यहां बांधी जाती थी, उन्हीं का कबीला आज तक वहां रहता है। फिर पहाड़ों के नीचे सारा पहाड़ पहाड़ वहां कोई हरा दरख्त नहीं, अरब के बाहर किसी ने देखो तो अंदाजा हो वहां हरा घास भी नहीं उठता है, पत्थर ही पत्थर दूर दूर तक। जब बारिश होती है चंद दिन हरी घास होती है फिर खत्म। आप यकीन मानो कि दूर दूर तक कोई हरा दरख्त नहीं, हरी घास नहीं, लेकिन पहाड़ के नीचे वादी है एक जगह के ऊपर हरा हरा ग्रीन ग्रीन दरख्त खड़ा हुआ। उस खानदान के बच्चों ने आकर के हमको बदलाया आरबी जबान के अंदर, उन्हें सब पसंद रसूल ये दरख्त वही दरख्त है जिसके नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मुबारक चीरा गया था, ये वही दरख्त है। और कहा कि ये हुजूर के सीने मुबारक को चीरने की बरकत के इस पूरे इलाके के अंदर एक भी हरा दरख्त नहीं है, लेकिन बस यही एक दरख्त हरा है और सैकड़ों दरख्त ऐसा ही है, ये हुजूर की बरकत। उसी की तरह हिदायत के अंदर इशारा निकलता है, नबी हमने आपके सीने को खोल दिया, उसमें ईमान भर दिया, इल्म और यकीन भर दिया, मोहब्बत और मारिफत भर दी, अल्लाह का प्यार उसके अंदर भर दिया। दूसरी आयत में फरमाते ये नबी आपके ऊपर जो बोझ था और वो बोझ हमने हटा दिया और दूर कर दिया। कैसा बोझ था ये कुरान आज हमारे लिए अल्लाह ने आसान कर दिया। وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ये अल्लाह ने आसान कर दिया हमारे लिए, वरना जब ये कुरान की आयत हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरती थी तो हुजूर को बहुत तकलीफ होती थी, इतनी तकलीफ होती थी कि सख्त ठंडी के जमाने में मदीना की ठंडी जितने देखी हो पता चले, बड़ी भारी ठंडी होती है मदीना में आज भी। सख्त ठंडी की मौसम में भी जब कुरान की आयत जिब्राइल लेके आते थे अल्लाह के यहां से तो हुजूर को इतनी गर्मी होती थी कि पसीना पसीना हुजूर का बदन हो जाता था और पसीने के कतरे गिरने रहते थे। और अगर हुजूर उजनी पर बैठे हो और उजनी पर बैठे बैठे कुरान उतरना चालू हुआ जिब्राइल आ गए तो उजनी जैसा जानवर, इतना मजबूत जानवर, वो भी हुजूर के वजन को उठा नहीं पाता था कुरान की वजह। ऐसे तो वो उजनी हुजूर को लेके जाती थी, दौड़ती भी थी, लेकिन जब कुरान उतरना चालू होता अल्लाह के यहां से तो इतना वजन होता था कि کہ حضور کی اونٹنی دب جاتی تھی, نیچے بیٹھ جاتی تھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو وزن ہوتا تھا قرآن کے اترنے کا, ہم نے وہ وزن وہ بوجھ ہم نے ہلکا کر دیا, آسان کر دیا. اور ایک بہت بڑا ٹینشن رہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس ٹینشن کی وجہ سے بھی طبیعت حضور کی بہت بھاری بھاری رہتی تھی. اور ٹینشن اس بات کا تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کو تمام انسانوں تک ایمان پہنچانے کی ذمہ داری عطا کر رہا ہے. انا ارسلنا بالحق بشيرا ونذيرا, تمام انسانوں کو آپ کو اللہ کا دین پہنچانا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری, اللہ کا دین قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پہنچا دینا, یہ ذمہ داری اتنی بھاری ذمہ داری تھی کہ حضور کو بہت بھاری لگتا تھا. کیسے ہوگا, کیسے ہوگا؟ اللہ تعالی نے وہ ذمہ داری بھی آسان فرما دی, ہلکی کر دی, اور فٹافٹ صحابہ ایماندار ہے. اور مدینہ جانے کے بعد تو ایسا سمجھو کہ ایمان کی ہوائیں چل رہی ہیں, لوگ کفر سے توبہ کر رہے ہیں, ایمان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. پہلے 10, 20, 25, 40 آدمی ایماندار ہے, اب سینکڑوں میں ایماندار ہے, اب ہزاروں میں ایماندار ہے. اور جب زندگی کا آخری حج پڑا, اس سال تو ایک روایت کے مطابق 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہے. ایمان پھیل رہا ہے, اسلام بڑھتا جا رہا ہے, اور حضور کی ذمہ داری ہلکی ہوتی جا رہی ہے. بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, زندگی میں آخری 17 نمازیں کچھ ایسی ہوئی ہے کہ حضور نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکے, اتنے بیمار ہو گئے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی جگہ پہ امامت کرائی. ایک دن فجر کا وقت تھا, غالباً جس دن انتقال ہوا اسی دن, اس لیے کہ مسجد نبوی میں جاتے دیکھو بالکل حضور کا جو روم ہے کمرہ ہے بالکل مسجد کے ساتھ میں, اور یوں چادر لٹکی رہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار اور بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکے, ایک چارپائی پر پلنگ پہ آرام کر رہے, وہیں آپ نے نماز پڑھی فجر کی. فجر کی نماز پڑھی, مسجد میں نماز ہو رہی ہے, آپ نے پردہ اٹھایا اپنے روم کا. تو جب روم کا پردہ اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گئے, اسی لیے کہ پوری مسجد نبوی باہر تک بھری ہوئی چکار ہے صحابہ سے. کہے اللہ ایک دن وہ تھا کہ میں اکیلے نماز پڑھتا تھا, اور جب میں اکیلا نماز پڑھتا تھا تو مکہ کے دشمن میرے اوپر اونٹ کی ہوجڑی ڈال دیتے تھے. حضور سجدے میں جاتے تو ابو جہل اونٹ کی ہوجڑی منگوا جاتی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی ہوجڑی ڈال دیتا تھا تاکہ وہ ہوجڑی کے وزن میں دب جائے. ان کی ہوجڑی بہت بڑی ہوتی ہے. کہ ایک دن وہ تھا کہ میں اکیلے نماز پڑھتا تھا اور دشمن مجھے ستاتے تھے, آج تمہیں وہ دن خوشی کا دکھلایا کہ یہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے और कहां कहां मेरे ऊपर ईमान लाने वाले सहाबा मौजूद है। अल्लाह के हुजूर का बोझ जो ईमान की दावत का था वो हल्का कर दिया। तो उसी को दूसरी आयत के
फरमाया
जिस बोझ ने इस वजन ने आपकी मुबारक कमर को तोड़ दिया और परेशान रहते हुए पूरे कुरान के अंदर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन के अलग अलग हिस्से को अल्लाह ताला ने कुरान में बयान कर कहीं तो हुजूर के सीने मुबारक को बयान कर कहीं तो हुजूर की कमर मुबारक को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया कहीं तो हुजूर के हाथ मुबारक को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया ये हुजूर के अल्लाह के दरबार में महबूब चहीता प्यारा और लाजला होने की बात है कि अल्लाह हुजूर के अलग अलग हिस्से को कुरान में बयान कर रहे जिस बोझ और वजन की वजह से आपकी कमर दुख रही थी अल्लाह ताला ने उस बोझ को हल्का कर दिया और सारे आलम के अंदर ईमान फैल रहा है, दुनिया में ईमान जगमगा रहा है। आगे इशारा फरमाते अल्लाह ने आपके नाम को आपकी याद को बहुत ऊंचा कर दिया। हुजूर का नाम कितना ऊंचा हो गया, जहां अल्लाह का नाम वहां हुजूर का नाम कितना ऊंचा कर दिया। बड़ा बलन किया अल्लाह ने हुजूर के नाम में। आप देखिए मौजी अजान देता है तो अजान में पहले अल्लाह का नाम देता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फिर फौरन हुजूर का नाम लेगा व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पूरी दुनिया में जहां अल्लाह का नाम वहां हुजूर का नाम और जुग्राफिया को सामने रखकर पूरी दुनिया का नक्शा देखो पूरी दुनिया में कोई मिनट ऐसी नहीं हर हर मिनट पर पूरी दुनिया के टाइम टेबल के एतबार से अजान होती रहती है। पूरी दुनिया का टाइम टेबल मिला तो हर मिनट 24 घंटे की ऐसी है कि 24 घंटे की 60 मिनट पूरी दुनिया के अंदर अजान की आवाज होती है। क्या नतीजा निकला कि पूरी दुनिया में 24 घंटे की हर हर मिनट के अंदर हुजूर का नाम बलंद हो रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आपकी जानकारी के लिए बदला काबतुल्लाह से मक्के मुकर्रमा से सबसे ज्यादा दूर मस्जिद सबसे दूर मस्जिद वो न्यूजीलैंड के अंदर है वो सऊदी गवर्नमेंट ने बनवाई है। कहते हैं कि माइल के एतबार से दुनिया में सबसे ज्यादा दूर काबतुल्लाह से अगर कोई मस्जिद है तो वो वहां पर है। वहां से शुरू कर रोजाना दुनिया में सबसे पहला सूरज निकलता है फिजी में फिर न्यूजीलैंड के अंदर फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर और दूसरा है जाकर के सैन फ्रांसिस्को के अंदर 24 घंटे की हर मिनट में पूरी दुनिया के अंदर अजान की आवाज बलंद होती है और अल्लाह के नाम के साथ हुजूर का नाम बलंद होता है। पहले अजान फिर इकामत होगी यहां की तभी और दिन का करेगा अशद अशद मोहम्मद रसूलुल्लाह। जुमा का खुतबा होगा तो पहला खुतबा हो कि दूसरा खुतबा हो, पहले अल्लाह का नाम आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर हुजूर का नाम आएगा वाशर मोहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, हुजूर का नाम मुबारक आएगा। तो अजान हो, इकामत हो, खुतबा हो, हर एक में पूरी दुनिया में हुजूर का नाम मुबारक बुलंद हो रहा है। बल्कि उससे आगे की बात करता हूं, एक हदीस में अजीब मजमून आया कि लोहे महफूज कहां है जिसमें तमाम इंसानों की तकदीर लिखी हुई है, जहां सबसे पहले कुरान अल्लाह ने लिखा था, अल्लाह ने कुरान वहां सबसे पहले महफूज किया था, वो कहां है? लोहे महफूज मेहराज वाली हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमान के ऊपर गए, सातों आसमान पूरे हो गए, वहां एक बोरडी का दरख्त है, एक पेड़ का दरख्त है जिसको सिदरतुल मुंतहा कहते हैं, इसका जिक्र कुरान में आया है, आसमान के ऊपर ये आखिरी जगह है, उसके आगे फरिश्ते भी ली जा सकते हैं, फरिश्तों की लास्ट बॉर्डर, इसीलिए उसको सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। मुंतहा अरबी में कहते एंड को, अंत किसी चीज का, और सिदरा कहते हैं अरबी में बोर्डी के दरख्त को, ये आखिरी पेड़ का दरख्त, उसके आगे तो जिब्राइल भी नहीं जा सकते, वहां जाके जिब्राइल ही ने तो कहा था कि हुजूर अब आप आगे अकेले जाएंगे, अब मैं साथ में नहीं आऊंगा। तो हुजूर ने कहा जिसको शेख तारी ने तारीफ फरमाया, बोलो बोता के रातन मजा नमान के मंदन के हिंदू ये मालन नमान गलत करे हुए भरतर परम गुरु के तजल्ला बुसोदर परम ऐसी दोस्ती मक्का से मुझे साथ ले गया है, मक्का से पैलेस्टाइन मस्जिद अक्सा ले गए, मस्जिद अक्सा से सातों आसमान ले गए, और इस देश के दरख्त के पास आके कह रहे आगे आप अकेले जाएंगे। जिब्राइल ने कहा हुजूर से गलत करे मुई बदर पर पुरोगे तजल्ला उसोदर पर, और मेरे हजरत फरमाया करते थे हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, क्या हस्त तो साई तजल्ली मन्नता नंबर बदन पहुंचे जब शिवरा पर तो जिब्राइल ये कहकर रुके हस्त तो राही तजली मन्नतानं परदन के जब उस देर के दरख्त पर पहुंचे जिब्राइल ने कहा हुजूर अब आप आगे जाएंगे, अगर एक कदम भी मैंने आगे बढ़ा दिया तो अल्लाह की तजली का नूर मुझे चला के राख बना देगा, मैं नहीं जा सकता। हुजूर आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, सातों आसमान से भी ऊपर आगे जा रहे, वहां लोहे महफूज है, इतना ऊपर लोहे महफूज है। अब सोचो लोहे महफूज की ऊंचाई कितनी, सातों आसमान पर देरी का दर, उस देरी के आगे लोहे महफूज, जहां कोई फरिश्ता भी नहीं जा सकता। हदीस के अंदर आता है कि वो जो लोहे महफूज है जहां अल्लाह ने इंसानों की तकदीर लिखी है, جہاں سب سے پہلے قرآن حفاظت میں رکھا گیا اس لوہے محفوظ کے بیچ میں بالکل بیچ میں ایک کلمہ لکھا ہوا ہے. کیا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ. اللہ اکیلے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ ودینہ الاسلام. اللہ کا دین اسلام ہے. پھر آگے محمد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. جتنا اونچا اللہ نے حضور کا نام بیان کیا کہ جہاں کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا, جتنی اونچائی کے اوپر کسی فرشتے کی پہنچنے کی طاقت نہیں, اللہ نے اس لوہے محفوظ کے بیچ میں ہمارے حضور کا نام مبارک لکھ دیا. یہ ہے وفانا لگا ذکر. اگر مولانا احمد اللہ صاحب رانی جی رحمت اللہ علیہ بہت پیارا اس کو تعبیر فرماتے تھے شعر میں, فرش پر آپ کے دم دمے, عرش پر آپ کے ہم ہمیں, فرش پر آپ کے دم دمے, عرش پر آپ کے ہم ہمیں, بل بل مولا بھی کمائی, کشفت جا بھی جمائی, حسنت جمینیوں کے پاری, سلو علیہ وآلہ. جتنی اونچائی پر اللہ نے حضور کا نام لکھا سبحان اللہ, اتنا اونچا کسی اور کا نام ہوئی اور اپنا لگن ذکر. ہم نے آپ کے نام کو اتنا اونچا فرمایا. آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. یہاں دو کچھ ہے لیکن عربی قاعدے کے اعتبار سے, معنی کے اعتبار سے ایک ہے, اور یسرا دو الگ الگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سختی کے بعد آسانی ہے اور آسان تکلیف کے بعد آسانی ہے. کیا میننگ ہوا کہ ایک تکلیف اور مصیبت ہوگی تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دو آسانی عطا فرمائیں گے. گھبرا مت جانا, کبھی کوئی تکلیف آ گئے, کبھی کوئی مصیبت آ گئے, گھبرا مت جانا. ایک تکلیف آئے گی, اللہ تمہیں دو آسانی عطا فرمائیں گے. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے مرفوعاً حدیث مفسرین نے نقل کیا, فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کے صحابہ کو فرمایا, اے میرے لاڈلے صحابہ, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دو آسانی کے بیچ میں ایک تکلیف کو رکھا ہے, لہذا ایک تکلیف کبھی دو آسانی کے اوپر غالب نہیں آ سکے گی. اور کتنی اچھی بات کیجیے کہیں شرا, جب تم کو کوئی تکلیف آ رہے تو الگ نشرا کی صورت پڑ لینا. اس لیے کہ خود اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں ایک تکلیف آئے گی, اللہ کو آسانی عطا فرمائیں گے. اس بات کا یقین رکھو, یہ وعدہ ہے اللہ کا قرآن میں, کوئی بھی تکلیف آئے, کوئی بھی مصیبت آئے, صبر کر. علامہ تقیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ اس آیت کی تفسیر میں بڑی زبردست بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف آئے دنیا میں, نمبر ایک صبر کر, دوسرا کام اللہ پر بھروسہ کرو کہ میرے اللہ میرے لیے کافی ہے. तीसरा काम अल्लाह के पास दुआ करो, अल्लाह को मेरी तकलीफ को दूर करवा दे। चौथा काम अल्लाह के फज्र और करम से पक्की उम्मीद रखो कि अल्लाह मेरी तकलीफ को इंशाअल्लाह दूर करवा देंगे। और पांचवा काम अगर तकलीफ लंबी हो जाए तो ना उम्मीद मत हो जाओ, अल्लाह कभी ना कभी रात का अंधेरा खत्म करके सुबह की रोशनी दिखाएंगे। तकलीफ दूर करेंगे अल्लाह और अल्लाह आसानी कर देंगे। ये बड़ी बशारत है इस आयत करीमा के अंदर। आगे अल्लाह फरमाते जब तुमको फुर्सत मिले टाइम मिले तो अल्लाह की इबादत में अपने आप को थकाओ। ये हुजूर को फरमान है और कयामत तक आने वाले तमाम दीन का काम करने वाले मुसलमान के लिए इनके अंदर अल्लाह की तरफ से सबक कि मेहनत करो दीन के काम के लिए और फिर अल्लाह के सामने इबादत में लगो। दिन में मेहनत और रातों में इबादत में थकाओगे तो अल्लाह तुम्हारी दीन की मेहनत में रूहानियत पैदा करवाएंगे। हुजूर दिन भर मेहनत करते कभी काफिर के घर कभी उस मुशरिक के घर और फिर रात को तहज्जुद में लंबी लंबी नमाज पढ़ते इतना थकते इतना थकते कि हुजूर के पैर मुबारक सूख जाते थे गर्म हो जाते थे और भी अल्लाह के सामने दुआ करते तो अल्लाह ताला मेहनत के अंदर बरकत अता करता। आप अपने रब की तरफ ध्यान लगाओ तवज्जो लगाओ अल्लाह की तरफ तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। इसी तरह पैसा फरज का मनसब नमाज पढ़ लो तो नमाज पढ़ने के बाद खूब मेहनत करके अल्लाह के सामने दुआ मांगो। मुफस्सिरीन फरमाते कोई भी नमाज पढ़ो फर्ज नमाज पढ़ो नफिल नमाज पढ़ो नमाज पढ़ने के बाद दुआ कर लिया करो अल्लाह ताला दुआ को कबूल करना है। खुसूस हदीस में आता है कि हर नमाज के बाद अल्लाह ताला ने एक मकबूल दुआ रखी है, एक दुआ ऐसी रखी है जिसको अल्लाह ताला जरूर कबूल करना है। इसीलिए नमाज पढ़ने के बाद जल्दी जल्दी उनके भागना नहीं चाहिए। कभी कोई इमरजेंसी है कोई जल्दी है अलग बात है, बाकी नमाज पढ़ने के बाद दुआ करो और दुआ की पूरी ध्यान के साथ पूरी मेहनत के साथ अल्लाह सुबहानहू व तआला नमाज के बाद दुआ को कबूल करना है। अल्लाह सुबहानहू व तआला हमें रातों की इबादत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमें दुआओं का मांगना नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची पक्की कामिल मोहब्बत और इश्क अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक मुजर्रबात की बात भी बतला दूं, आजकल बहुत से लोग शिकायत करते कमर में दर्द चला रहे तो मुजर्रबात में से ये है कि जिसको कमर के अंदर दर्द हो या करोड़ में रीढ़ की हड्डी में दर्द हो तो वो दर्द की जगह पर शहादत की उम्मीद रखे और उम्मीद रखकर के औरत विज्ञा के साथ अलग नशरा की सूरत पड़े तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके दर्द में शिफा अता करे। जितना दर्द कितनी मरतबा पढ़ो रोजाना हर नमाज के बाद एक मरतबा पढ़ लो या दिन में दो तीन मरतबा पढ़ लो चंद दिन या अमल करो इंशाअल्लाह अल्लाह इसकी बरकत से कमर के दर्द को और रीढ़ की हड्डी के दर्द में अल्लाह शिफा अता करे।